हरे कृष्णा। तो आज अभी हम हमारे ईशोपनिषद के आखिरी विभाग में आ गए हैं। जो आखिरी विभाग है वह अभी प्रार्थनाओं का विभाग है। तो 15 से 18 श्लोक जो है ये इस ईशोपनिषद के जो स्वयंभू मनु जो है स्वयंभू मनु जो है वो यक्ष को वो यज्ञ भगवान जी यज्ञ के अवतार के रूप में आए हैं, उनको प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा किस तरह से देवी देवताओं की पूजा और फिर मायावाद कैसे ये दोनों व्यक्ति को परम सत्य से गुमराह करते हैं। तो आज हम अभी प्रार्थनाओं का विभाग जो आखिरी विभाग है चालू करेंगे। तो आप श्लोक दोहरा सकते हैं मेरे पीछे, 15वां श्लोक है ये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो यह जो है हिरण्मयेन पात्रेण की पात्र मतलब जो आवरण या जो ढका जाता है पात्र होता है जिसमें कुछ रखते हैं। तो हिरण्मय मतलब जो तेजोमान जो सफेद या सोनेरी ज्योति से भरा हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य जो परम सत्य है अपिहितम मुखम और परम सत्य का मुंह जो है वो इस हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। तत्त्वम पूषण अपावृणु तो पूषण मतलब है परम पुरुषोत्तम भगवान जो हमारा पोषण करते हैं। अपावृणु तो आवरण मतलब ढकना, अपावृणु मतलब जो ढका हुआ है वो निकालना, जो आवरण निकालना। सत्य धर्माय दृष्टये आपका जो असली सत्य स्वरूप है सत्य रूप है मुझे कृपया दिखाइए। तो ये श्लोक है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी के 10 पैराग्राफ है। तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी पूषण इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। पूषण मतलब जो पोषण करते हैं जो पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवद गीता के आधार पर कि जो परम सत्य स्पष्ट सुनाई दे रहा है सबको, जो पूषण ये शब्द है उसका अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत का आधार है ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति के परे परमात्मा है। पर ये ब्रह्म ज्योति और परमात्मा दोनों के आधार भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण ये परम पोषण करता है, परम पूषण है। ये पूषण जो शब्द है इसका उल्लेख कृष्ण से हो रहा है। तो जैसे 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं 26वें श्लोक में कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्मण है उसका प्रतिष्ठा उसका आधार मैं हूँ। और जैसे भगवान बताते हैं कि कैसे सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। तो 6वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो सब लोगों के हरे कृष्णा यस हरे कृष्णा ओ रियली ओके हाँ। तो मैं बता रहा था किस तरह से जो ब्रह्म ज्योति है उसके आधार भगवान श्री कृष्ण है। यह 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं भगवद गीता में। उस तरह से जो परमात्मा है उनके आधार भी भगवान कृष्ण ही है और इसका उल्लेख 6वें अध्याय के 31वें श्लोक में आता है। भगवान वहां बताते हैं सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वमास्थितः, कि जो देखता है कि जो सबके हृदय में जो परमात्मा है वह वास्तव में मेरा ही विस्तारित रूप है। जो समझता है वह जानता है कि सही में भगवान कृष्ण ही सब चीजों के आधार है। तो भगवान कृष्ण न केवल भौतिक जगत के आधार है, न केवल आध्यात्मिक जगत के आधार है, पर भगवान के अलग अलग रूप जो है उन सब के भी आधार है, ब्रह्म ज्योति के आधार है और परमात्मा के भी आधार है। तो ये प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये मतलब कि ये परम सत्य का, यहाँ पे धर्म का अर्थ होता है स्वरूप, कि जो धर्म का अर्थ सत्य जो धारण करता है, तो जो परम सत्य का जो परम स्वरूप है वह दिखाने के लिए प्रार्थना हो रही है यहाँ पे कि कृपया आपका असली रूप दिखाइए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वहाँ पे कि कैसे जो प्रामाणिक साधक होता है वह ब्रह्म ज्योति के परे जाकर भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। तो साधारण प्रभुपाद जी उपनिषदों से यहाँ पे श्लोक बोलते हैं कैसे, तो सर्वव्यापी ब्रह्मन है, यहाँ है, वहाँ ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं, सब जगह में ब्रह्मन है, पर वो ब्रह्मन का एक स्रोत है कि एक शुरुआत है, आगम स्थल है उसका, और वह है भगवान श्री कृष्ण। तो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ब्रह्म सिंह ने बताया है कि यह व्यक्ति, ये भगवान की जो प्रभा है, भगवान की ज्योति है, वो मुझसे आ रही है। और ऐसे उसी तरह से वर्णन आता है कि जब आप जानते हैं दशम स्कंद में आखिरी अध्याय में से 89-90 चैप्टर में वो प्रसंग वर्णन आता है कि जब द्वारका में एक ब्राह्मण होता है जिसके पुत्र का बार बार वध हो रहा होता है, तो फिर तभी अर्जुन वहां पे होता है, अर्जुन व्रत लेता है कि मैं तुम्हारे पुत्र का की रक्षा करूंगा, और अर्जुन वहां पे अपने गांडी व लेकर खड़े होते हैं, फिर भी वो उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में वो पुत्र को ढूंढने के लिए अर्जुन कृष्ण के साथ पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, फिर ब्रह्मांड के परे जाते हैं महाविष्णु के लोक में। तो महाविष्णु के लोक में जब जा रहे होते हैं तो तब ऐसे वर्णन आता है कि जो ब्रह्म ज्योति से पार करके जा रहे हैं वो, तो ब्रह्म ज्योति से पार करके जा रहे हैं, तभी भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह ब्रह्म ज्योति मेरे ही विस्तारित रूप है। इसी लीला का और वर्णन आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, वहां पे वो दिखते हैं कैसे ब्रह्म ज्योति के परे अलग अलग विष्णु के लोग अर्जुन को दिखते हैं, और अर्जुन कहता है हाँ ये नारायण इतने बड़े महान है, पर तभी बाद में उनको देखता है कि जो ब्रह्म ज्योति के परे सब नारायण के रूप है, पर उनके परे वो सब नारायण के रूप कृष्ण से ही विस्तारित हो रहे हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ये ब्रह्म ज्योति के भी परे हैं। और जो साधक भगवान के परम सत्य को जानना चाहता है वह कृष्ण के स्वरूप में उनको देख सकता है। तो ऐसे बताया गया है कि दो प्रकार के अंधकार होते हैं, एक है काला अंधकार और दूसरा है सफेद अंधकार। बोले सफेद अंधकार बोले क्या चीज है कि मान लीजिए अगर कोई किसी हाईवे पे रस्ते पे चल रहे हैं और तभी वहां पे रात का समय है और जो सारे रस्ते के लाइट स्ट्रीट लाइट चले जाते हैं तो चारों ओर अंधकार हो जाता है, तो ये अंधकार है काला अंधकार, क्योंकि इस अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पर मान लीजिए उस समय अचानक सामने से कोई गाड़ी आती है और आप जाते हैं कई बार ट्रक्स वगैरह से गाड़ियां होती है तो वो अपना ग्लेयर दिखाते हैं, ग्लेयर मतलब बहुत ही तीक्ष्ण तीव्र ज्योति आती है उसकी। तो जब वो तीव्र ज्योति आती है तो वो ज्योति इतनी तीव्र होती है कि उसको ग्लेयर के कारण भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कई बार जब हाईवे पे ऐसे कोई गाड़ियां बहुत ग्लेयर दिखाते हैं तो उसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्लेयर से वो जो बहुत ही तीक्ष्ण रोशनी है गाड़ी की उससे भी यही अंधापन जैसे आ जाता है। वहां पे रोशनी है तो रोशनी इतनी तीव्र है कि उसके कारण कुछ देख नहीं सकते हैं। तो जो रोशनी के कारण जो व्यक्ति की कुछ देख नहीं पाता है उसको कहते हैं सफेद अंधकार। तो ठीक उस तरह से ये भौतिक जगत में सारे भौतिकवादी लोग हैं, वे काले अंधकार से फंसे हुए हैं। काले अंधकार में फंसे हुए मतलब वे इस भौतिक तत्व के ही सत्य मान रहे हैं, माया की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और वे इस अंधकार भरे भौतिक जगत के पीछे करे कुछ है इसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं। पर जो ज्ञानी लोग हैं वो इस अंधकार भरे जगत के परे जाते हैं पर वहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति के कारण उन्हें एक सफेद अंधकार मानो जैसे उससे ढक जाते हैं। सफेद अंधकार मतलब कि रोशनी है पर वो रोशनी इतनी तीव्र है कि रोशनी के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये सफेद अंधकार के परे कैसे जाना है उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। तो ये भगवान की कृपा की याचना इस श्लोक में हो रही है। तो ब्रह्मन के परे भगवान है, जो मायावादी लोग होते हैं कहते हैं कि भगवान के परे ब्रह्मन है, पर हमने पहले भी चर्चा की थी, स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि मेरे परे कुछ नहीं है। मत्तः कई श्लोकों की हम चर्चा कर सकते हैं भगवद्गीता में, तो संक्षिप्त में हम तीन श्लोक यहाँ पे बोलेंगे। सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परा, मुझसे बढ़कर, मुझसे अलग और कोई सत्य नहीं है। तो ये बोल रहे, ये भगवान बोल रहे, ये ब्रह्मन नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब भगवान से बड़ा ब्रह्मन नहीं है। ठीक उसी तरह से अहम सर्वस्य अहम सर्वस्य प्रभवो, दसवें अध्याय का आठवां श्लोक है, वो भी बड़ा स्पष्ट है कि भगवान के परे और कोई नहीं है। मैं ही सबका स्रोत, भगवान बोले अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवत, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। और पंद्रहवें अध्याय में जो 16, 17, 18 ये तीन श्लोक है, इनको हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य बताते हैं कि ये त्रिश्लोकी भगवत गीता है। सो 15 अध्याय 16, 17, 18 श्लोक, तो उसमें बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे जो मुक्त जीवात्मा है वह भी भगवान में, भगवान के समान नहीं होते, वह भी भगवान के अधीन ही रहते। तो इस त्रिश्लोकी भगवत गीता के बाद में 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान एक बड़ा स्पष्ट श्लोक बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। आसान श्लोक है, यो माम एव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद् भजति माम, स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। तो यहाँ पे बता रहे यो माम एव असम्मूढ़ो, जो मुझे असम्मूढ़ो, मूढ़ा मतलब जो मूर्ख है, असम्मूढ़ो मतलब जो सारे मूर्खता से परे चला गया है। तो वो व्यक्ति जो सारी मूर्खता से परे जाकर, जो सारे माया के प्रभाव से परे जाकर, जो मुझे किस रूप से समझता है, जानाति पुरुषोत्तम, वो समझता है कि मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, मैं सर्व इस भौतिक जगत में बहुत पुरुष है पर मैं उत्तम पुरुष हूँ। तो उत्तम ये शब्द हम बहुत बार बहुत ही साधारण भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं, कोई लोगों का नाम भी है कभी उत्तम होता है, पर उत्तम इस शब्द का यहाँ उस संदर्भ में बड़ा महत्व है कि तम मतलब अंधकार और उत्तम मतलब जो अंधकार के परे है। तो पुरुषोत्तम मतलब वे पुरुष जो इस भौतिक जगत के अंधकार के परे है। तो पुरुषोत्तम मतलब मायावादी लोग कहते हैं कि हमारा सारे पुरुषत्व जो है वो माया के प्रभाव से आ रहा है, और हम जब माया के परे चले जाएंगे, माया के प्रभाव से परे चले जाएंगे, तो फिर कोई पुरुषत्व नहीं रहेगा, हम सब ब्रह्मन में लीन हो जाएंगे। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है वह समझता है कि मैं पुरुषोत्तम, स सर्वविद् भजति माम, यह सब कुछ जान गया है, सर्वविद बन गया है वो। और ऐसा सर्वविद व्यक्ति क्या करता है, क्या वो ज्ञान उपासना करता है, नहीं, भजति माम, वो मेरा भजन कर रहा है। किस तरह से, सर्व भावेन भारत, सारे हृदय की भावना को मुझ पे एकाग्रित करके। तो इस तरह से बड़े स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि वे ही परम सत्य है और उनके अलावा उनके परे और कोई सत्य नहीं है। और हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मन से भगवान आते हैं उनको भगवान मूर्ख बताते हैं, अबुद्धय बताते हैं, 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। तो कुछ जगह पे भगवान मम आत्मा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। मम आत्मा मतलब कि मेरी आत्मा, जैसे कि 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं चमत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृण्ण च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, मम आत्मा भूत भावना। भगवान बता रहे हैं कि सारा जगत मुझ में स्थित नहीं है, देखो मेरा योग ऐश्वर्य कि ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है पर मैं इसके परे हूँ। तो वहां पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर समझाते हैं कि मम आत्मा ये शब्द केवल एक व्यावहारिक पद्धति से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि कई बार शास्त्र में वर्णन आता है कि राहु का सिर अभी जीवित है, राहु के सिर का उससे प्रभाव हो रहा है। तो वास्तव में आप जानते हैं कि अमृत मंथन लीला में राहु एक असुर था, वो देवी देवताओं के पक्ष में आके बैठ गया और वहां पे अमृत पीना चाह रहा था, तो मोहिनी मूर्ति ने अपने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर काट दिया। तो जब उसका सिर काट दिया तो फिर क्योंकि उसका इसके मुंह ने और गले तक अमृत का स्पर्श हो गया था, तो उसका सिर नीचे का शरीर की मृत्यु हो गई, पर उसका मुंह बचा रहा, उसका सिर बचा रहा। तो जब हम राहु का सिर कहते हैं तो राहु केवल सिर ही है, सिर के अलावा उसको कुछ है ही नहीं। राहु का सिर और राहु एक ही है, क्योंकि राहु का शरीर है ही नहीं, राहु और उसका सिर मतलब राहु मतलब उसका सिर ही है बस। पर फिर भी व्यवहारिक उसे बात करते बात शास्त्र में उल्लेख आता है राहु का सिर मतलब राहु ही है। तो ठीक उस तरह से भगवान कभी कभी अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं मम आत्मा मेरी आत्मा, तो समझना चाहिए कि मेरी भगवान की आत्मा और भगवान में कोई फर्क है ही नहीं, वो केवल व्यावहारिक पद्धति के लिए बता रहे हैं भगवान मम आत्मा। पर जैसे कि वराह पुराण में उल्लेख आता है देही देहो विभेदोयम, कि वो ये परम सत्य है उनमें देह और देही इनमें कोई फर्क नहीं है, वह एक ही है भगवान का शरीर और भगवान स्वयं, उनमें आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये परम सत्य है वो भगवान है। तो यहाँ पे दूसरे से पांचवें पैराग्राफ में बताया कैसे भगवान स्वयं को ब्रह्मन के रूप में प्रकाशित करते हैं, और ये कैसे प्रकाशन होता है वो छठे से दसवें पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ये परम जो साक्षात्कार ये केवल भक्ति के द्वारा होता है, भक्ति के अलावा ये साक्षात्कार संभव नहीं है। तो वास्तव में इसके लिए एक मैंने टेबल बनाया है, वो जो टेबल है वो अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर मैं इसको थोड़ा इसका वर्णन करने का प्रयास करता हूँ और बाद में मैं ये पावर पॉइंट प्राणेश्वर प्रभु को भेज दूंगा, तो फिर जो वो टेबल देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। वैसे टेबल में क्या बताया गया है कि अलग अलग मार्गों से अलग अलग चीजों तक का साक्षात्कार हो सकता है। जैसे जो सांख्य है, सांख्य से व्यक्ति समझता है कि ये भौतिक रूप है, भौतिक रूपों के परे ये भौतिक वस्तुएं है, जो भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि वहां असली सत्य है। मतलब सांख्य के मार्ग से व्यक्ति का समझता है कि ये टेबल इतना सुंदर है, ये बिल्डिंग इतनी सुंदर है, ये स्त्री इतनी सुंदर है, तो यह जो है ये भौतिक दृष्टि है। पर भौतिक स्तर पे भी अगर व्यक्ति और गूढ़ दृष्टि देखता है तो समझेगा कि वास्तव में ये सब रूप है, ये केवल क्षणभंगुर है। तो भौतिक स्तर पे जो असली सत्य क्या है, ये रूप वगैरह असली सत्य नहीं है, भौतिक जो वस्तुएं हैं जैसे जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये असली सत्य है। तो मतलब सांख्य मार्ग से व्यक्ति क्या समझता है, सांख्य मार्ग से व्यक्ति, सुनाई दे रहा है आपको?
हाँ,
हाँ, तो अभी स्पष्ट है। हाँ, तो सांख्य मार्ग से क्या समझता है व्यक्ति कि जो भौतिक वस्तुएं है, भूमि रापो नलो वायु, ये असली सत्य है, ये सारे रूप इस भौतिक जगत के सत्य नहीं है। तो उसके ऊपर है ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग दूसरा स्तर है। ज्ञान मार्ग से व्यक्ति क्या समझता है, तो ये जो इस साइड में बता रहा हूँ मैं, ये है मार्ग और ये है साक्षात्कार। तो सांख्य से साक्षात्कार होता है कि भौतिक जगत में सारे रूप है, रंग है, ये सब अस्थाई है, पर स्थाई क्या है, वह भौतिक तत्व है, भूमि रापो नलो वायु। पर ज्ञान मार्ग से इसके परे जाता है व्यक्ति और समझता है कि वास्तव में ये सारे भौतिक तत्व के परे एक आध्यात्मिक तत्व है। तो ज्ञान मार्ग से परम सत्य का साक्षात्कार होता है ब्रह्म ज्योति के रूप में, तो प्रभुपाद जी उसको तात्पर्य बोलते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ विदाउट पोटेंसीज, परम सत्य पर परम सत्य कोई शक्तियां नहीं है। तो शक्तियां नहीं है मतलब क्या कि परम सत्य को कोई हाथ पैर आंखें यह सब नहीं है ऐसे बताया जाता है। तो उस तो ज्ञान मार्ग से क्या साक्षात्कार होता है कि केवल एक अस्तित्व है। वास्तव तो कैसे है इसका वर्णन ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान भगवीता में करते हैं, ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गमचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय सम। सो आगे बताते हैं भगवान, अगले श्लोक में बताते हैं कि कौन ये ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। पर ये तो अक्षरम, उसमें कभी बदल नहीं होता है, अनिर्देशम उसको आप वर्णन नहीं करते शब्दों से। एक तो अक्षर अव्यक्तम, इसका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है, सर्वत्र गम वो सर्वत्र व्यापी है, अचिंत्य उसका आप चिंतन भी नहीं कर सकते। पहले बोला वर्णन नहीं कर सकते हैं, अभी बोल रहे चिंतन भी नहीं कर सकते। कूतस्थम, कूतस्थम मतलब वो एक ही स्थिति में हमेशा रहता है, अचलम वो कभी हिलता नहीं है, ध्रुव ध्रुवम मतलब वो परम शाश्वत सत्य है। तो इसका वर्णन 12वें अध्याय के 13वें श्लोक तीसरे श्लोक में भगवान कर रहे हैं कि इस तरह से जो ब्रह्मन है, तो ये प्रभुपाद जी जो इस तात्पर्य में बता रहे हैं, ये जीव गोस्वामी के शब्द संदर्भों से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से व्यक्ति समझता है कि ब्रह्मन ही परम सत्य है। ब्रह्मन मतलब तो परम सत्य मतलब क्या समझ रहा है कि परम सत्य पर परम सत्य की कोई शक्तियां नहीं है। तो फिर उसके बाद में योग मार्ग से क्या होता है, व्यक्ति ब्रह्मन के साथ साथ करके ऊपर जाते हैं, सोचते हैं कि वास्तव में परमात्मा परम सत्य है। अब परमात्मा को वो बताते हैं कि भौतिक शक्तियों का साक्षात्कार है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो परम सत्य को की भौतिक शक्तियां है समझ में आता है, क्योंकि ये भौतिक जगत की सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उसका संहार कर रहे हैं, तो ये करने के लिए परमात्मा का शक्ति होनी चाहिए। जैसे बताते हैं भागवत में चक्षुर्यस्य न रिष्यति, वह परमात्मा हमेशा अपनी आंखों से देख रहे हैं और एक पल भी पलक नहीं उनके झपकती है, तो उनकी आंखें हैं और बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति है उसके कोई आंखें नहीं है, तो ब्रह्म ज्योति को न तो केवल भौतिक शक्तियां है न आध्यात्मिक शक्तियां है। तो जब योग मार्ग से परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो उसका मतलब हुआ कि परम सत्य को भौतिक शक्तियां है, ये समझ में आ गया। पर उसके ऊपर चौथा स्तर जो है भक्ति मार्ग से व्यक्ति को परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार होता है। पूर्ण साक्षात्कार मतलब जो परम सत्य और परम सत्य की जो आध्यात्मिक शक्तियां है, जो परमात्मा है वे कोई लीला नहीं करते हैं, वे भौतिक स्तर पे भौतिक जगत में मार्गदर्शन करते हैं और मार्गदर्शन खत्म हो जाता है तो वापस चले जाते हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर कोई जमींदार है, उसका कोई बालक है, उसका कोई बेटा है, वो सर्कस देखने जाना चाहता है, तो सर्कस देखने के लिए जाना जाता है तो फिर जो मालिक है वो अपने नौकर को बुलाता है, जो उसी गांव से आया, वो एक आदमी को बुलाया था जो उसी गांव का है, जो उस गांव को जानता है, उस सर्कस को जानता है अच्छी तरह से, और फिर उसको बुलाता है और उसके हवाले अपने पुत्र को कर देता है, और वो जो नौकर है वह उस पुत्र को सारे सर्कस में घुमाता है, इधर उधर दिखाता है, जो भी देखना है बोलता है मुझे इसमें खेलना है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ सबको लेके जाता है। फिर बाद में वो बालक बोलता है मुझे घर जाना है, तो घर लेके जाता है। अब जब घर में आ जाता है तो घर में उस नौकर को साथ में होने की कोई जरूरत नहीं है, तो घर में तो उसका खुद का घर है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये परमात्मा ऐसा है। परमात्मा मतलब क्या है कि जीवात्मा भौतिक जगत में सर्कस देखने आया है, वास्तव में सर्कस देखता नहीं है, उसकी सर्कस हो जाती है, वो लोग उसको पीटते हैं, उसको बहुत दुख मिलता है। पर जब जीवात्मा इस भौतिक दुनिया का सर्कस देखने आता है तो भगवान किसी नौकर को नहीं बुलाते हैं, पर अपने ही स्वरूप को विस्तार कर दे परमात्मा के रूप। तो ये परमात्मा भौतिक जगत में निरीक्षण करता है, मार्गदर्शन करता है जीवात्मा का, पर जब आध्यात्मिक जगत में लौट जाता है तो आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा का कोई कार्य नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा के स्तर पे कोई आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार नहीं है, इसीलिए परमात्मा का साक्षात्कार भी अपूर्ण है। तो पूर्ण साक्षात्कार है वो भगवान का साक्षात्कार, क्योंकि भगवान को भौतिक शक्तियां भी है, वो भौतिक जगत का माया अध्यक्ष प्रकृति भगवान बताते हैं, और उनकी आध्यात्मिक शक्तियां भी है, महात्मा अनुमान पार्थ दैवी प्रकृति माशुता, उनकी दैवी प्रकृति भी है। तो इस तरह से जो भगवान का साक्षात्कार भक्ति से होता है, तो ये चार स्तंभ मैं पुनः एक बार बोलता हूँ कि सांख्य मार्ग से व्यक्ति को क्या साक्षात्कार होता है कि भौतिक रूपों रंगों के परे जो भौतिक तत्व है, भूमि रापो नलो वायु, वे परम सत्य है, पर यह अधूरा साक्षात्कार है, क्योंकि भौतिक स्तर के भौतिक तत्वों के परे भी कोई तत्व है। तो उसके दूसरा स्तर जो है ज्ञान मार्ग से व्यक्ति भौतिक तत्वों के परे जाके आध्यात्मिक तत्व तक पहुंचता है, तो ब्रह्म ज्योति को समझता है तभी, पर ब्रह्म ज्योति को कोई शक्तियों के रूप में नहीं समझता, वो केवल एक ब्रह्म ज्योति मतलब सर्वव्यापी शांत अस्तित्व के रूप में समझता है। तो उसके ऊपर योग मार्ग से व्यक्ति परम सत्य को समझता है, परम सत्य वह है जो इसकी शक्तियां है, कौन सी शक्तियां है, भौतिक शक्तियां है, क्योंकि भौतिक जगत का पालन कर रहे हैं, और उसके ऊपर है जो भगवान, वो भगवान की भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियां हैं। इस तरह से तो ये जो परपोर्ट है थोड़ा टेक्निकल है, पर अगर आपने जो वर्णन किया है इसको आप बाद में स्वयं पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से। तो अभी हम किसी कोई सवाल है या हम 16 श्लोक पे जाए अभी? कौन सा एग्जाम्पल?
नौका
सर्कस वाला नहीं बताया था कि भाई कोई बड़े जमींदार का व्यक्ति है, बेटा है, वह कोई सर्कस देखने जाना चाहता है, तो फिर वो सर्कस के इलाके को जानने वाला कोई व्यक्ति है उसके पास, और उसके साथ भेजा जाता है, तो वह जो जानने वाला व्यक्ति है वो बालक को लेके जाता है, ये सर्कस में मुझे झूला देखना है देखो, ये जानवर देखने हैं देखो, ये नदी में खेलना है खेलो, ऐसे तो खेल के वापस आ जाता है। तो उसी तरह से जो परम भगवान हम सबके पिता है, तो जब भौतिक जगत से हम आना चाहते हैं, भौतिक जगत के सर्कल देखना चाहते हैं, तो भगवान अपने नौकर जैसे जमींदार के नौकर को भेजता है, वैसे भगवान भी हमारे साथ किसी को भेजते हैं, पर भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं तो किसी नौकर को भेजने की जगह पे वे स्वयं का एक रूप विस्तार कर लेते हैं, और वो विस्तारित रूप है परमात्मा। पर ये परमात्मा भौतिक जगत में मार्गदर्शन के लिए है, आध्यात्मिक जगत में उनका कोई भूमिका नहीं है। स्पष्ट है अभी? ओके, तो अभी हम 16 श्लोक हो जाएंगे। तो ये इसका जो है इसका मीटर थोड़ा अलग है, तो वी विल हम सिंपली इसको संस्कृत को तय करते, कोई मीटर में गाएंगे नहीं। भूषण हरे कृष्णा भूषणे कर्षेयं सूर्य प्राजापत्य कर्षेयं सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूहा तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम् ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि सोऽहमस्मि। तो यहाँ पे जो मायावादियों का जो बहुत ही प्रिय विधान है सोहम, वह आता है यहाँ पे सोहम, मैं सो मतलब वो, हम मतलब मैं, कि वो मैं ही हूँ, ऐसे बोलते सोहम कि वो परम सत्य वास्तव में मैं ही हूँ। तो अगर हम देखेंगे श्लोक को पूरी तरह से तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, स्पष्ट रूप से रूपम ये शब्द आ रहा है, रूपम मतलब क्या रूप, और कैसा रूप है कल्याण तमम, कल्याण मतलब इससे अच्छा होता है, और तमम मतलब सर्वश्रेष्ठ कल्याण जिससे होता है। तो मायावादी लोग कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत के रूप है इनसे कल्याण नहीं होता है, इनसे विनाश होता है, क्योंकि जीवात्मा भौतिक जगत के रूपों से आकर्षित हो जाता है, पर जो भगवान का रूप है भगवान के रूप से जब व्यक्ति आकर्षित होता है तो उसका कल्याण होता है, तो इसीलिए रूपम कल्याणतमम। तो ये श्लोक भी पुनः एक प्रार्थना है कि हे नाथ, हे आदि कवि, हे जगत के पालक, हे नियामक, हे शुद्ध भक्त के उद्देश्य, हे सारे मानव समाज के हित चिंतक, कृपया अपना अपनी जो दिव्य ज्योति है जो आपको ढक रही है उसको निकाले ताकि मैं आपका रूप देख सकूं। और यहाँ बताया कि मैं आपका रूप जब देख रहा हूँ तो जैसे आपका रूप, जैसे जो आपका स्वभाव है वही मेरा स्वभाव है। कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो पिछले श्लोक की प्रार्थना थी उसको आगे कर रहे हैं प्रार्थना। क्या आगे हो रहा है प्रार्थना में, तो बता रहे हैं कि जब पिछले श्लोक में बताया कि कृपया जो आवरण है, हिरणमय पात्र है, वो निकालिए, पर इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वो हिरणमय पात्र निकालेंगे तो फिर क्या दिखेगा, क्या दिखता है? दो चीजें दिख रही है कि कल्याणतमम रूपम, कि आपका रूप परम कल्याणकारी रूप है, यह दिखता है। दूसरा चीज क्या दिख रहा है कि सोहम, यो असाव असौ पुरुष सोहम, कि जैसे आपका स्वरूप है, जैसे आपका स्वभाव है, वैसे ही मेरा है। मतलब बताया जा रहा है कि जैसे भगवान आध्यात्मिक है वैसे हम भी आध्यात्मिक ही है। इस तरह से ये पिछले श्लोक की प्रार्थना को आगे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताया व्यूह, पहले श्लोक बताते हैं पहले और दूसरे पैराग्राफ में व्यूह रश्मिन, कि कृपया ये जो तेजो में आवरण है उसको आप निकालिए, तो उसके पीछे हमें, तो ब्राह्मण के पीछे हमें पुनः भगवान दिख जाएगी बता रहे हैं। और फिर ये तो समय पहले उल्लेख किया था पिछले श्लोक में, तो पुनः इसको और अधिक नहीं करूंगा मैं। कल्याणतम, कल्याणतम मतलब कि जो भगवान का साक्षात्कार है ये सबसे कल्याणमय साक्षात्कार है। तो क्यों सबसे कल्याणमय साक्षात्कार है? क्योंकि भगवान का जब साक्षात्कार होता है तो जो जीवात्मा के प्रेम, आनंद, शांति, संतुष्टि की खोज का पूरा अंत हो जाता है। इसके परे और कुछ उसके खोज करने की जरूरत नहीं है। इसे छठे अध्याय में वर्णन आता है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, यह प्राप्त कर लिया तो उसके परे और प्राप्त करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार है। इसलिए भगवान का साक्षात्कार ये कल्याणतम है। ऐसे अगर कोई ज्ञान मार्ग में लग जाता है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम भौतिक जगत के परे लग रहा है, परे चले गया है वो, पर फिर भी ब्रह्म ज्योति से पुनः उसको भौतिक जगत में आना पड़ेगा। अगर कोई परमात्मा से आकर्षित हुआ है तो भी अच्छा है, पर भौतिक जगत के परे जा रहा है वो, पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो फिर दो उसके अंतिम गति हो सकती है। एक ही कि वो ध्यान से परमात्मा को देखता है, तो यदि वो अपनी कल्पना करता है कि ये परमात्मा और मैं एक ही हूँ, तो फिर वो परमात्मा से लीन हो जाता है, तो फिर वो ब्रह्म में चला जाएगा। पर अगर वो समझता है कि परमात्मा का शाश्वत दास हूँ, तो फिर वो वैकुंठ में दास के रस में चला जाएगा, वैकुंठ में शांत रस में चला जाएगा, वैकुंठ में पेड़ जैसे कुछ बन जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा खतरा है ज्ञान योग मार्ग में, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाएगा तो ब्रह्म ज्योति में शाश्वत काल से नहीं रहेगा, तो पुनः पतन होने की संभावना है। पर कोई व्यक्ति अगर भगवान धाम प्राप्त कर लेता है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। तो जो कल्याण शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, और यही शब्द का उल्लेख छठे अध्याय के 40वें श्लोक में आता है। वहाँ पे भगवान बोलते है विनाशस्तस्य विद्यते यदि कल्याण कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान बताते हैं नहीं कल्याण कश्चित्, हे अर्जुन को तात संबोधन कर रहे, तात मतलब है मेरे प्रिय मित्र। अर्जुन को बता रहे भगवान कि अगर कोई कल्याणमय मार्ग में लगता है तो फिर उसका कभी विनाश नहीं होगा, हमेशा उसको परम सत्य परम कल्याण ही प्राप्त होगा। तो परम कल्याण कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि भगवान जो, तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि कोई ज्ञान मार्ग में लगता है, योग मार्ग में लगता है, या भक्ति में लगता है, तीनों कल्याणमय मार्ग है, क्योंकि तीनों भौतिक इंद्रियतृप्ति के परे आध्यात्मिक जगत की ओर आध्यात्मिक तत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर इन तीनों में जो स्थायी प्राप्ति केवल भक्ति से होगी, इसलिए भक्ति और भक्ति द्वारा जो भगवान की प्राप्ति होती है वह कल्याणतम है, सब कल्याणमय कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी इन तात्पर्य कृपा जी आगे बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी भगवत संदर्भ से जीव गोस्वामी को कोट करते हैं, भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तो आप पढ़ सकते हैं भगवान, इन तीन शब्दों का, इन तीन अक्षरों का क्या अर्थ है जीव गोस्वामी पाद हम बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी उसको उल्लेख करते हैं कैसे है। वास्तव में जो भगवान का, भगवान भक्त का बड़े व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसको बड़े प्रेम से देखभाल करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसे बाद में स्पष्ट करते हैं, तत्पर इनका जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग है। अगर जीवात्मा परमात्मा एक ही होते हैं तो फिर भगवान को तो यहाँ पे प्रार्थना करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे छठे और सातवें पैराग्राफ में सोहम अस्मी इसका अर्थ बता रहे हैं। सोहम का अर्थ क्या है कि वो मैं हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव गोस्वामी इसके लिए उदाहरण देते हैं, इस सोहम का अर्थ कैसे समझे। बोलते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक गुफा में जिंदगी भर रहा है और उसको रोशनी क्या है ये कभी पता ही नहीं है, और फिर और जो गुफा है, कंदर है वह भी बंद है, तो बाद में बहुत समय के बाद कोई गुफा को तोड़ता है दरवाजे को और वहां पे अंदर आता है व्यक्ति, और फिर वो अंधकार में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको बोलता है बाहर बड़ा रोशनी है। ये रोशनी क्या होती है? ये रोशनी सूरज से आती है। सूरज क्या है? तो उस गुफे में एक किरण आ रहा है सूरज का। सूरज का जब किरण आ रहा है तो उसको देख के बोलते हैं कि देखो वो जो सूरज का किरण, वह सूर्य है। तो वास्तव में वह सूर्य का केवल एक किरण है, वो सूर्य नहीं है, पर वो एक किरण से समझ में आता है, अंदाजा आता है कि सूरज क्या है, सूरज किस तरह ज्योतिमान होगा। तो ठीक है, ये सोहम जो है मैं वो हूँ, ये वास्तव में गुणात्मक रूप से है, ये मात्रा के रूप से नहीं है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे हम भी सच्चिदानंद है, और जो भगवान शाश्वत है हम भी शाश्वत है, पर मात्रा में भगवान विशाल है और हम बहुत छोटे हैं। तो एक बार एक प्रभुपाद जी के कार्यक्रम में एक व्यक्ति आए, वो बोले कि स्वामी जी मेरे गुरु भगवान है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, भागवतम के पांचवें स्कंध में वर्णन आता है कि जो ऋषभदेव थे भगवान के अवतार थे, और जब भगवान के अवतार थे तो उन्होंने जब जड़ संन्यास ले लिया तो फिर वो एक ही जगह पे लेटे रहते थे पागल व्यक्ति के समान, और जब लेटे रहते थे तो जब उनकी विष्ठा होती थी तो विष्ठा भी सुगंधित आती थी। तो प्रभुपाद जी बोले आपके गुरु से जाके आप पूछो कि उनके विष्ठा का कौन सा सुगंध आता है। तो फिर वो व्यक्ति चुप हो गया। तो वास्तव में जो जीवात्मा भगवान परमात्मा में बहुत बहुत फर्क है, भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य और शुद्ध रहता है, इसीलिए जो हम और भगवान पूर्णतया सब तरह से एक नहीं है, हम बहुत सीमित है भगवान विशाल है, पर हम भी आध्यात्मिक है भगवान भी आध्यात्मिक है। और फिर आखिरी पैराग्राफ में, आठवें पैराग्राफ में कृपा जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पे कृपा याचना हो रही है कि हे प्रभु आपकी ब्रह्म ज्योति को, आपकी ज्योति को निकालो, युग रश्मि निकालो जिससे कि मैं आपका रूप देख सकूं। तो कृपा जी बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा इस प्रार्थना की पूर्ति होती है, मतलब अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान स्वयं को उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान बताते हैं दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यन् योगम ऐश्वरम, दिव्यं ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे कि आप देख सकते हो। तो भक्त को ऐसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है भगवान को कि कृपया ब्रह्म ज्योति आप निकालो, भक्त जी को भगवान की सेवा करते रहते हैं भक्त, तो भगवान अपने आप अपना जो सुंदर स्वरूप है वो भक्त को दर्शन करा देते हैं, जिस तरह से उन्होंने ध्रुव महाराज को करा और नारद मुनि क्या अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार सेवा कर रहे थे, ध्यान पूर्वक ध्यान कर रहे थे, अर्चन विग्रह की सेवा कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे और फिर भगवान विष्णु उनके हृदय में पहले प्रकट हो गए, हृदय से बाहर प्रकट हो गए। तो उस तरह जैसे ध्रुव महाराज ब्रह्म ज्योति के ऊपर एडाए विष्णु का दर्शन कर सके, वैसे भक्त भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और फिर जैसे मैं पहले बता रहा था कि पहले श्लोक की जब स्वयंभू मनु वानप्रस्थ लेकर वानर जंगल में तपस्या कर रहे थे एक पैर पे खड़े रहकर, तो तभी कुछ राक्षस उनको खाने को आ गए। और जब राक्षस उनको खाने को आ गए तब यज्ञ अवतार जो थे उनके पुत्र थे उन्होंने आके राक्षसों को वध कर दिया। और उस समय स्वयंभू मनु ने ये प्रार्थना भगवान यज्ञ से की थी, ये सारे ईश्वर मुझे श्लोक बताए थे। तो अभी आखिरी दो श्लोकों में बता रहे हैं कि हे प्रभु अभी आपने मुझे मृत्यु से बचा लिया पर मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु आ जाए पर आपका स्मरण रहे। आपका स्मरण रहेगा तो फिर जो मृत्यु मेरे लिए वास्तव में अमरत्व का द्वार बन जाएगा। तो यह भाव अभी मृत्यु के समय व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा शरीर त्याग कर दे महोदय पर मैं आपका स्मरण कर सकूं, यह भाव से ही आखिरी 17वां श्लोक है। तो इस श्लोक को भी दोहराएंगे। वायुर अनिलम अमृतम वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। तो बता रहे हैं कि वायुर अनिलम शरीरम वायुर अनिल बता रहे हैं कि अनिलम अमृतम की जो वायु है इस शरीर का जो वायु है वह सारा विश्व का वायु है उसमें लीन हो जाए और मेरा जो शरीर है वह जल के राख बन जाए। पर हे प्रभु मैंने जो आपकी सेवा की थी कृपया उस सेवा को याद करो। और यहाँ पे बताया नहीं गया तो भाव यह है कि मुझे एक उचित आपके गंतव्य प्रदान कर दो, मुझे एक उत्तम उद्देश्य प्रदान उत्तम ध्येय प्रदान कर दो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं इस तरह से। तो कोई ये साधारण लोगों को यह प्रार्थना बड़ी अजीब लगे, कौन बोल सकता है कि मेरा शरीर जल के राख हो जाने दे, कोई चाहता नहीं है ऐसे हो। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ऐसा भाव क्यों आता है, ऐसा भाव व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि शरीर है ये वास्तव में ये प्रभुपाद जी बोलते हैं फॉरेन ड्रेस, ये एक परदेशी वस्त्र है हमारे लिए। एक बड़ा दिलचस्प शब्द है शरीर, ये एक परदेशी वस्त्र है। परदेशी वस्त्र का मतलब क्या है कि जब जीवात्मा भौतिक जगत में आता है तो सारा भौतिक जगत जीवात्मा के लिए एक परदेश के समान है। तो जैसे मान लीजिए कोई उत्तर रशिया में साइबेरिया नाम की जगह है, बहुत ठंडी जगह है, वहां पे कोई व्यक्ति जाता है तो फिर उसको ठंडे कपड़े पहन के जाना पड़ता है, उसको मतलब ठंडे वातावरण के कपड़े स्वेटर मफलर ऐसे सब पहन के जाना पड़ता है। तो वो उस देश के लिए वो कपड़े जरूरी नहीं, तो फिर वो ठंडी के कारण मर जाएगा वो। ठीक उस तरह से जीवात्मा जब भौतिक जगत में आता है तो क्योंकि जगत भौतिक है और जीवात्मा आध्यात्मिक है तो उसको एक शरीर चाहिए जो भौतिक जगत में के लिए अनुकूल हो। तो वह शरीर है यह जो हमें प्रदान किया गया है। तो कोई व्यक्ति हरे कृष्णा यस प्रभु हरे कृष्णा ओके अभी सुनाई दे रहा है तो व्हाट क्या लास्ट पॉइंट आपने क्या सुना? तो जैसे कोई साइबेरिया में जाता है तो वहाँ पे ठंडे वातावरण के लिए उचित कपड़े चाहिए। ठीक उस तरह से जीवात्मा जब भौतिक जगत में आता है तो भौतिक जगत के लिए जो उचित वस्त्र है वह उसको चाहिए और वह वस्त्र है ये भौतिक शरीर। तो वास्तव में ये भौतिक शरीर कोई गर्व का कारण नहीं है, कोई लोगों को लगता है कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, कोई फैशन शो में लोग अपने शरीर वो तो फैशन में वो अपने जो कपड़े पहने उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, पर वास्तव में कपड़ों का प्रदर्शन नहीं कर रहे, खुद के शरीर का प्रदर्शन करते हैं। और वास्तव में शरीर क्या है, कि वो दिखने में सुंदर हो या दिखने में कुरूप हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, पर वास्तव में ये शरीर क्या है, जीवात्मा के लिए एक जेल के कपड़े के समान है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसको जेल का सफेद यूनिफॉर्म हो या लाल यूनिफॉर्म हो पहनना पड़ता है, तो वैसे ये भौतिक शरीर जो है ये एक जेल का यूनिफॉर्म है। तो अभी जेल का यूनिफॉर्म यही वास्तव में आत्मा के लिए बहुत बड़ी बदसूरती है, कि कितना भी सुंदर शरीर क्यों न हो, तो व्यक्ति जब सो के उठता है तो नाक से, मुंह से, पूरे शरीर के नौ द्वारों से बहुत गंदी बदबू और गंदी वस्तुएं आती है। तो वास्तव में शरीर सुंदर नहीं है, ये शरीर ये एक परदेशी वस्त्र है जीवात्मा के लिए। जितने भी भले ही सुंदर दिखो, वह केवल माया का प्रभाव है कि थोड़ी देर के लिए दिखने के लिए सुंदर लगता है, पर वह जो है बड़ा ही गंदा शरीर है ये। और क्योंकि और ये शरीर को हमें त्यागना ही पड़ेगा, हम चाहे या न चाहे, हम बुढ़ापा होते, मृत्यु होती, त्यागना ही पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर ये शरीर, तो ये पहले तीन पैराग्राफ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के शरीर हमको अलग अलग योनियों में मिलते हैं, और ये सबको जो भी शरीर मिलता है वो त्यागना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर शरीर त्यागना ही है तो इस तरह से त्यागो कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, न कि इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म हो और न ही ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो। तो उसके लिए हमें जैसे कोई व्यक्ति एक किराए के घर में रह रहा है, तो किराए के घर में रह रहा होता है तो आप जानते होंगे, आपके कोई माता पिता, रिश्तेदार, भाई बहन होंगे, तो किराए के घर में होते तो बहुत चिंता लगी रहती है कि जो मालिक है कभी भी बोलेगा अभी एक साल हो गया निकल जाओ, दो साल हो गया निकल जाओ, और फिर तो रस्ते पे आते हैं तो फिर अभी कहाँ दूसरा घर ढूंढना पड़ता है। तो वैसे ही जो हमारा शरीर है ये किराए के घर के समान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, जब एक किराए के घर में रह रहा है तो वो इस तरह से अच्छे से पैसा कमा लेता है, ऐसे योजना बना लेता है कि उसके बाद में उसका एक अच्छा घर हो, उसका एक स्थायी अपना खुद का घर हो, उसकी योजना बना लेता है। तो जब योजना होती है उसकी इस तरह से, तो फिर वो उस घर में, तो इस घर से निकाल देते हैं तो उस घर चले जाता है और वो घर स्थायी है उसका। तो आपको वो एक पेट में एक राजा, एक व्यक्ति फंस गया था, उसकी कहानी पता है आपको इसके बारे में? एक बार एक व्यक्ति नाव से जा रहा था तो उसकी जो उसकी जहाज थी तो जहाज टूट गई। जहाज जब टूट गई तो किस तरह से वो तैरते तैरते एक छोटे से आइलैंड बेट में आ गया। वो और बेट में आ गया तो वहां पे उसने देखा कि वहां पे कोई आदिवासी लोग जैसे लोग रहे थे, तो उनके सिर में तीर थे, चाकू थे और बड़े खूंखार लग रहे थे। पर उन्होंने उसको पकड़ लिया और इसको पकड़े गया किया, उनको लगा क्या है, मुझे बलि देने वाले है, क्या करने वाले है। पर इन्होंने क्या किया, उसको अपने राज्य में लेके गए, अपने गांव में लेके गए और उनका जो राज्य था वो बेट का उसको राजा बना दिया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, मुझे राजा क्यों बना दिया है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारा ये रिवाज है कि सागर से जो भी व्यक्ति आता है हमारे बेट में आ जाता है। आपको बेट में कहते हैं ना आइलैंड, जो चारों ओर सागर से ढका हुआ है, जो हमारे बेट में आता है जो व्यक्ति आता है उसको हम राजा बनाते हैं एक साल के लिए। अच्छा, राजा बनाते उसका शायद अच्छा, एक साल के लिए। एक साल के बाद क्या होता है, नहीं, एक साल के बाद क्या होता है कि हम उसको बलि देते हैं हमारे देवी को और फिर उसको हम खा लेते हैं। तो डर जाता है, अभी मेरा मुझे राजा बनाया है, मेरा आदेश पालन कर रहे हैं, पर बाद में मुझे बलि चढ़ा देंगे। फिर वो सोचता है क्या करे। तो फिर वो एक योजना बनाता है, तो बोलता है कि अपने मंत्री से पूछता है कि यहाँ पे और कोई बेट है क्या दूसरे। बोले हाँ, यहाँ पे अनेक बेट है। तो फिर वो जहाज तैरते हुए जाता है और फिर दूसरे जगह एक बेट होता है, वहां पे बोलता है कि अपने सारे अपने सारी जो शक्तियां है, संपत्ति है, सैनिक है, नागरिक है, उन सबको उस बेट में दूसरा राज्य बनाने को लगा देता है, सेवा में लगा देता है। और फिर एक साल जैसे ही खत्म होता है तो वो एक नाव में बैठता है और ये बेट छोड़ के उस बेट में चला जाता है, और उस बेट में उसके लिए उसने अपने सारे राज सामग्री से, राज संपत्ति से एक अच्छा घर बना लिया है, उसके रिश्तेदार वहीं के साथ में हैं और वहां पे सुखी रहता है। और यहां से जो बलि होने वाला था वो बलि से बच जाता है। प्रभुपाद जी उस तरह से बोलते हैं कि उस तरह से हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम जब घर में होते हैं तो माता पिता हमें प्रेम करते हैं, हमें हमारे मेरे आंखों का तारा है बोलते हैं, जिसे भक्ति ठाकुर गाते हैं, जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिलो भाला। वो कहते हैं कि हे प्रभु, जनक जननी मतलब माता पिता के प्रेम से क्या लगने लगा मुझे, संसार लागिलो भाला, ये संसार बड़ा अच्छा लगने लगा मुझे। पर जैसे हम जानते हैं कि हमको बड़े ही दुनिया के लोग बड़े प्रेम करते हैं अभी, पर वो प्रेम कब तक है, जब तक हम जीवित हैं। और ये शरीर का एक्सपायरी डेट पहले से फिक्स हो गया है। शरीर जैसे कोई दवाई ले रहा होता है तो दवाई का एक्सपायरी डेट होता है कि इस समय के बाद आपकी दवाई मिलनी चाहिए, वैसे ही शरीर का भी एक्सपायरी डेट होता है। वो कब है, 10 साल के बाद हो सकता है, 20, 50, 60, 100 साल, 100 साल तो आजकल कोई जीता नहीं है, 50-60 साल के बाद होगा। तो उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सारे उसके रिश्तेदार अगर उसके शरीर को नहीं खाते होंगे तो उसके जायदाद पे हड़प जाते हैं और सब कुछ छीनना चाहते हैं। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अभी मेरे पास संपत्ति है, शक्ति है, बुद्धि है, तो ये सब को इस्तेमाल करता है आध्यात्मिक जगत में स्वयं को, स्वयं के लिए एक घर बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी को जब कुछ लाइफ मेंबर बड़ी मदद कर रहे थे जुहू मंदिर बनाने में, तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे कि आप यहाँ पे कृष्ण के लिए मंदिर बना रहे हो, कृष्ण आध्यात्मिक जगत में आपके लिए घर बना रहे हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारे लिए भगवान आध्यात्मिक जगत में घर बना रहे हैं। तो ये शरीर का जब विनाश हो जाएगा, अगर हम शरीर को त्यागना तो है ही, जैसे वो राजा को एक साल के बाद वो राज का पद त्यागना है ही, ऐसे हमें शरीर त्यागना तो है ही, पर अगर हम इस तरह से योजना बनाते हैं तो ये शरीर त्यागने के पहले हम आध्यात्मिक जगत में हमारे लिए घर बना लिया है। तो आध्यात्मिक जगत में हम घर कैसे बना सकते हैं, वास्तव में भगवान की भक्ति करके। तो प्रभुपाद जी अगले कार्यक्रम में बताते हैं कि हमें मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद क्या गति प्राप्त होगी, वह हमारे अंतिम विचार पे निर्भर होता है। तो हमारा जो आखिरी पल में जो विचार होता है मृत्यु के समय, वह विचार ही फैसला करता है कि उससे क्या कौन सी गति होगी हमारी। तो हम सब जानते हैं अंत काले जमाने में स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। तो वास्तव में जो अंतिम समय में हमारा विचार होगा वह किस पे निर्भर है, वो अंतिम समय का विचार हमारे जीवन भर में जो विचार थे उस पे निर्भर है। कोई मैं एक बार एक कॉलेज में प्रवचन दे रहा था तो एक विद्यार्थी ने पूछा कि अगर ऐसे है कि हमारे गति अंतिम समय में जो विचार आएगा उस पे ही है, तो अंतिम समय में जो अगर हम भगवान का स्मरण करें तो हम भगवान जाएंगे, तो क्योंकि मैं जिंदगी भर इंद्रियतृप्ति करता हूँ और जब मैं इंद्रियतृप्ति थक जाऊंगा और बूढ़ा होने लगा तो मैं एक बंदूक ले लूंगा, बंदूक सिर पे रखूंगा, अरे कृष्णा बोलूंगा, गोली लगाऊंगा और फिर भगवत धाम चला जाऊंगा। इस तरह से मैं इस जगत में भी भोग करूंगा और फिर भगवत धाम जाके भगवत धाम भी भोग करूंगा। तो हम भगवान को इस तरह से फंसा नहीं सकते, क्योंकि भगवान क्या बता रहे, अंत काले के मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। हमें न केवल भगवान का नाम उच्चारण करना है, उसका स्मरण करना है। तो मृत्यु के समय हम किस चीज का स्मरण करेंगे, यह वास्तव में हम सिर्फ कृष्ण बोलेंगे तो भी कृष्ण का स्मरण होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमारी किस चीज से आसक्ति है वह चीज का स्मरण होता है हमें वास्तव में। जैसे अगर हमें मृत्यु के समय हमारे हमें किस चीज का स्मरण होगा, जिस चीज से हमें भौतिक जीवन में हमारे जीवन में सबसे अधिक आश्रय संरक्षितता मिली है उस चीज का हमें स्मरण होगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, कोई उसको अगर सुनाई देता है कि अरे यहाँ पे बिजनेस चौपट हो गया या ये हो गया, तो तुरंत उसका हाथ अपने पॉकेट को जाता है। पॉकेट में क्या है, उसका वैलेट है, उसमें पैसे है। तो क्या होता है, जिस चीज जिस व्यक्ति जिस कार्य जिस चीज के द्वारा हमें सबसे अधिक आश्रय सबसे अधिक संरक्षकता महसूस हुई हमारे जीवन में, उस चीज का हमारा स्वाभाविक रूप से सारा हो जाएगा अंतिम के अंत समय। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत इंद्रुक्ति करता है जीवन भर, तो फिर वो सोचता है कि इंद्रुक्ति में इतना आनंद है, तो वो चाहे भी मुंह से हरे कृष्ण बोलेगा, पर मन उस समय हरे कृष्ण का स्मरण नहीं करेगा, कृष्ण का स्मरण नहीं करेगा, इंद्रुक्ति का स्मरण करेगा। तो इसीलिए हमें हमारे मन को प्रशिक्षण देना है कि सबसे अधिक आश्रय हम भगवान के स्मरण में महसूस करें। जब इस तरह से सबसे अधिक आश्रय हम भगवान के स्मरण में महसूस करेंगे इस भौतिक जगत में, हमारे भौतिक जीवन में, तो मृत्यु के समय भी हम भगवान के स्मरण में आश्रय महसूस करेंगे, और उस तरह से फिर हम भगवत धाम लौट सकते हैं। तो इसलिए अंतिम समय में जो हम स्मरण करना है, तो उसके लिए हमें जीवन भर स्मरण करना है। और फिर इसके बाद जो तात्पर्य बड़ा सुंदर है, रूपा जी बताते हैं कैसे भगवान कृष्ण 8वें और 9वें पैराग्राफ में रूपा जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण कभी अपने भक्त की सेवा को नहीं भूलते हैं, हमेशा वो सेवा को याद रखते हैं। और जो भी सेवा का फल है उचित समय उसको प्रदान कर देते हैं। तो इसके अनेक उदाहरण हैं, हम जानते हैं कि रूपा जी क्या कनेक शिष्य थे जिनको कभी समस्या आ गई भक्ति में सेवा में, तो वो सेवा छोड़ के चले गए, पर फिर उनको बाद में कैंसर या ऐसे कुछ आ गया, तो पुनः प्रभुपाद जी के शरण में आ गए थे, और फिर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको प्रभुपाद जी ने खत लिखा कि आपने वृंदावन में कृष्ण का नाम लिया है, कृष्ण कभी आपको भूलेगे नहीं। और फिर बाद में उनको भक्ति में कोई समस्या आ गई, वो छोड़ के चले गए, पर बाद में जब पुनः प्रभुपाद जी से मिलने आए, तो प्रभुपाद जी ने उनको आलिंगन किया। प्रभुपाद जी बोले, मैं रोज तुम्हें याद करता था। तो प्रभुपाद जी शिष्य हैग्रीव प्रभु, तो प्रभुपाद जी बोले, मैं विग्रहों का दर्शन करता हूँ, मेरा हैग्रीव कहाँ चला गया है, मेरा हैग्रीव कब वापस आएगा। तो प्रभुपाद जी उनसे आलिंगन किया, उनको स्वागत किया। प्रभुपाद जी बोले, अभी आप कभी छोड़ के मत जाओ, और तुरंत उनको सेवा दे दी। और फिर वो तो हैग्रीव प्रभु बाद में वो हैग्रीव महाराज बने, और बाद में उन्होंने मृत्यु के समय न्यू वृंदावन में वहाँ पे अनेक भक्तों के साथ थे, राधानाथ महाराज थे, बाकी बड़े अनेक वैष्णव थे, उनके संग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो कोई व्यक्ति भले ही थोड़ी सेवा त्याग, कोई व्यक्ति भगवान को भले ही भूल जाए, पर अगर उसने सेवा की है भगवान की, तो भगवान उसको कभी नहीं भूलेंगे, तो भगवान जरूर उसको अंतिम समय में उसका फल उसका आश्रय दे देंगे। और फिर उसके बाद में 10वें 11वें पैराग्राफ में रूपा जी बता रहे हैं कि भगवान की जो कृपा है, ऐसे नहीं है कि जो पतित जो भक्ति से पतन जिनको हो गया है उनके लिए है, वास्तव में जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए भी कृपा है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे कृपा भगवान की कब मिलेगी, पर वास्तव में ऐसे नहीं है कि भगवान भविष्य में कभी कृपा देगी, भगवान हर पल कृपा दे रहे हैं, हमें सिर्फ कृपा स्वीकार कर रही है। तो हर पल हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की लीला का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, यही वास्तव में कृपा है। और जब कुछ साल पहले मैं मायापुर में गया था, तो वहां पे मेरे साथ एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि उनके एक रूम पार्टनर, वो जिस रूम में रहे थे, तो उनके जो रूम पार्टनर थे वो रशिया से आए थे, वो यूरोप से आए थे, बट यूरोप से जब भक्त आए थे, तो फिर रात भर सोए वो, और सुबह जब वो उठे तो देखा कि रात को ये भक्त सोए थे, तो उन्होंने देखा जो यूरोपियन भक्त आए थे, उन्होंने देखा कि उनका सारा शरीर लाल लाल हो गया था, रात भर मच्छरों ने काटा था। तो उन्होंने पूछा कि आपको मच्छर काट रहे थे रात भर? बोले हाँ। आपके पास मच्छरदानी नहीं थी? बोले नहीं थी। और कुछ मॉस्किटो कॉइल वगैरह भी नहीं था? बोले आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तो भक्त बोले कि मैंने जिंदगी भर मांस खाया है, तो मांस खाया है, और फिर मांस खाने से ये सारा जो रक्त है वो सारा दूषित हो गया है शरीर का, तो अभी ये मच्छर जो है रक्त खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सारा दूषित रक्त निकल रहा है, और मायापुर धाम में आके मैं अभी भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, तो उससे अभी शुद्ध रक्त तैयार हो रहा है।
तो इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो जो भक्त होता है ऐसे नहीं, वो हर एक परिस्थिति भगवान की कृपा देखता है। तो ये बड़ी दिव्य चेतना है, साधारण नहीं है हमारे लिए। पर हम आप देख सकते हैं हर परिस्थिति में हमें भगवान की कृपा उपलब्ध है। यदि हम दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान का विग्रह है, जब करना चाहते तो भगवान का नाम हमेशा है हमारे पास। जो महान भक्त कुंडली बताते हैं कि भगवान कितने कृपालु है, बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लेट के भगवान का नाम लेता है तो फिर भगवान तुरंत उठ के बैठ के सुनने लगते हैं उसका नाम, वो क्या बोल रहा है, इतने आंसू का अच्छा मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम लेगा ये तो फिर उसका कल्याण हो जाएगा। अगर कोई बैठ के और कोई भगवान का नाम लेता तो भगवान उठ के खड़े रहते हैं और फिर ध्यान पूर्वक सुनने लगते हैं। और कोई खड़ा होकर कोई भगवान के नाम लेता है तो फिर भगवान आनंद से नाचने लगते हैं कि अभी ये मेरे इतने करीब आ गया है। और फिर बोलते हैं कि अगर कोई हाथ उठा के पैर हिला के नाचता है भगवान का नाम लेते हुए तो भगवान आके उसको आलिंगन करते हैं, उसको उठा के भगवत धाम ले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की जो कृपा है हमेशा हमारे पास है। और ये भगवान की कृपा कैसे हमें मिल सकती है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। फिर प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज का उदाहरण लेते हैं और जो नौ विधा भक्ति है उसके बारे में बोलते हैं कि नौ पद्धतियों से अगर हम भक्ति करते हैं तो उसके द्वारा हम सब भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवत धाम लौट सकते हैं। तो फिर अभी हम 18वें श्लोक पे जाएंगे। 18वां श्लोक जो है वह अभी अंतिम प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। ये हम सब ब्रह्मचारी है तो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है कि ये प्रार्थना का भाव क्या है कि हे प्रभु मैंने हरे कृष्ण तो अभी हम आखिरी श्लोक आपके साथ आपके यहाँ पे आखिरी श्लोक अभी है ईशोपनिषद का। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक का भाव है कि हे प्रभु आप जानते हो मैंने क्या पूर्व कर्म किए है और क्या समस्या है मेरे भक्ति में आने वाली है, तो कृपया आप ये समस्याएं निकालिए और मुझे आपके मुझे सही मार्ग पे ले जाइए। अग्ने तो कृपया दोहराइए अग्ने नय सुप्ता रहे आसमान अग्ने नय सुप्ता विश्वानि देव वयुनानि विद्वान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुरानामीनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम। तो ये प्रार्थना है हे प्रभो आप अग्नि के समान परम शक्तिशाली हो और मैं आपके सामने गिर के प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझे सतमार्ग में ले जाइए जिससे कि मैं आपके पास आ सकूं और आप जानते हो कि मैंने क्या पूर्व कर्म किए हैं तो उसके अनुसार कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि किस तरह से हमारे पूर्व कर्मों के पूर्वजन्मों के कर्मों के कारण हमारे भक्ति में व्यत्यय उत्पन्न होते हैं। क्या होता है कि हम जब मान लीजिए कोई सुनाई दे रहा है आपको, हाँ तो मान लीजिए कोई अभी गाड़ी चला रहा है तो एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है तो फिर वो गाड़ी बंद भी कर दी तो भी क्या होती है, गाड़ी का पूर्व प्रवाह है उससे वो चलती रहती है तो फिर उसको रुकने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो मन है वो अनेक जन्मों से बहुत तेजी से चल रहा है इंद्र तृप्ति के मार्ग पर। तो अभी हमने भले ही भौतिक इच्छाएं बंद कर दी फिर भी क्या है मन इंद्र तृप्ति के मार्ग पर चलते रहता है और आपको सुनाई दे रहा है ना,
हरे कृष्ण। यहाँ पे एक ओर से बताया जा रहा है कि भौतिक जगत पूर्ण है, दूसरी ओर से बताया जा रहा है कि भौतिक जगत दुखालय है। तो ये पूर्ण कैसे है? तो वास्तव में ये भौतिक जगत अपने उद्देश्य के लिए पूर्ण है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि जो जेल है वो अगर कोई सोचेगा कि होटल के सामान जो इस्तेमाल करना है, जो खाने को ऑर्डर दूंगा वो मिलना चाहिए, एक एसी रूम चाहिए, बहुत आलीशान बिस्तर चाहिए, तो वो मिलेगा नहीं जेल में। पर जेल का काम क्या है? जेल जो उद्देश्य है वो क्या है कि लोगों को सजा देना और सजा के द्वारा उनका परिवर्तन कराना, उसके लिए वो पूर्ण है। तो जेल में क्या है कि कोई ऐसे बहुत कठिन मेहनत होती है, जेल ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति को खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, थोड़ी बहुत जगह मिलती है, फिर भी उसको वहां पे दुख भी है साथ में। तो ठीक उस तरह से ये भौतिक जगत है वह ऐसी जगह है कि हम यहाँ पे अगर सुखी से रहना चाहते हैं तो सुख से रह नहीं सकते हैं यहाँ पे। पर अगर हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये जेल है, तो जेल के लिए ये जेल की दृष्टि से ये पूर्ण है, क्योंकि हमें यहाँ पे यहाँ के इस भौतिक जगत के अस्थायी स्वभाव के कारण, इस भौतिक जगत के नश्वर स्वभाव के कारण हमें एक स्थायी शाश्वत धाम की ओर जाने की इच्छा जागृत होती है, और उसके द्वारा हम भगवत धाम लौट सकते हैं। तो भौतिक जगत ये दुखालयम है, यह भी उसकी एक पूर्णता का ही भाग है। तो मतलब कि जो जेल है वो एक होटल के समान नहीं है, ये अच्छा ही है, क्योंकि जेल होटल के समान होगा तो लोग कोई उसे बाहर जाना नहीं चाहेगा। तो ऐसे बताते हैं कि भक्तराम से ठाकुर एक कहानी बताया करते थे, देवर की कहानी। बोलते थे कि एक बार एक देवर था, वो अपनी पत्नी के साथ उसके पत्नी के माता पिता के घर में आ गए। तो माता पिता के घर में आ गए तो फिर वो देवर जी आए हैं, बोले देवर है ना, नहीं जमाई आए हैं बोले। तो फिर उनका बड़ा अच्छे से आदर कर रहे थे, बहुत उनको पूरी पकोड़ा पुलाव बहुत मेजबानी खिलाया। तो एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया। तो वो जमाई था तो उसने लग गया, अरे यहाँ पे तो बड़ा आनंद है, मैं वापस मेरे घर जाऊंगा, वहां पे कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, दुकान चलाना पड़ेगा, मैं यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे लोग मुझे खिला रहे हैं अच्छी तरह से। तो फिर क्या हो गया, तो वो जो लड़की के माता पिता था वो सोचने लगे, अरे ये कुछ नौकरी कर रहे हैं, यहीं पे बैठ के खा रहा है। तो फिर क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने पहले स्वीट बंद कर दिया, और फिर भी वहीं पे रह रहा था, फिर उन्होंने पुलावा पूरी बंद कर दिया, फिर उसको सिर्फ राइस दाल सब्जी चपाती दे रहे थे, फिर बाद में चपाती भी बंद कर दिया, सब्जी बंद कर दिया, सिर्फ राइस दाल था, और फिर भी वो वहीं पे रह रहा था, वो सो रहा था, खा रहा था, आराम कर रहा था। फिर बाद में राइस दाल भी बंद कर दिया, सिर्फ खिचड़ी खिला रहे थे, और खिचड़ी खा रहा था, फिर भी वहीं पर रह रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ गुंडों को बुलाया और फिर उसको पीटने लग गए, और पीटने लग गए, समझ गया पीट रहे होंगे, तो फिर वहां से भाग गया। तो फिर भाग गया और फिर वो अपने घर चला गया। तो ठीक उस तरह से वो बोलते हैं कि हम इस भौतिक जगत में है, हमको हमारे पास जवानी होती है, अच्छी आंखें होती है, तंदुरुस्त शरीर होता है, बुद्धि होती है, तो हम सोचते हैं कि अरे यहीं पे रह लूंगा मैं, अच्छा है, आराम से रहूंगा। तो फिर क्या होता है, तो हम इन सबसे थोड़ा बहुत पहले भोग कर सकते हैं, जैसे कि पहले वो बहुत अच्छा मेजबानी मिल रहा है, पर धीरे धीरे क्या करती है भौतिक प्रकृति, बोलती है अरे तुम्हें यहाँ पे रहना नहीं है, तुम्हें यहाँ से वापस जाना है। तो फिर क्या, हमारे आंखें की दृष्टि कम कर देते हैं, हमारे चलने की शक्ति कम कर देते हैं, हमारे बोलने की शक्ति कम कर देते हैं, हमारे पचन की शक्ति कम कर देते हैं, फिर भी जीवात्मा यहीं पे बैठा रहता है। फिर बाद में क्या आते हैं, यमदूत आते हैं अपने दंडों के साथ और फिर भगा देते हैं यहाँ से। तो ठीक उसी तरह से, तो जो 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 घर में अन्ना की जो जो मेजबानी है उसको कम किया जा रहा है, वो कुछ गलती नहीं है, वो भी योजना ही है, वो योजना के अनुसार ही कम किया जा रहा है, ताकि वो व्यक्ति घर छोड़ के जाए, वो अपने घर चले जाए। ठीक उसी तरह से ये भौतिक जगत में दुख है, वो दुख का एक उद्देश्य है, वो क्या है, जो सुख कम होते जाता है, दुख बढ़ते जाता है, उसका उद्देश्य क्या है कि उसके द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़ के भगवत धाम चले जाए। तो इसकी भौतिक जगत का दुखमय स्वभाव यह भी इस भौतिक जगत के पूर्णता का ही एक अंग है। ओके, ओके प्रभु। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, निर्विशेषवाद या खंडन ईश्वर प्रसिद्ध कैसे करता है? एक सवाल एक समय पे। तो अभी हमने देखा कि वैसे ये जो आखिरी दो श्लोक देखे हमने, 15वां 16वां श्लोक, वो दो श्लोकों में स्पष्ट रूप से खंडन हो रहा है। क्योंकि कैसे 15वां श्लोक में बता रहे हैं कि ये तेजो में ज्योति है, उसको आप निकालिए ताकि मैं आपका रूप देख सकूं। तो निर्विशेषवाद का बेसिक, निर्विशेषवाद का क्या उनका तर्क है कि निर्विशेष ब्रह्म ही परम सत्य है, पर वास्तव में ब्रह्म जो ईश्वर से बताया जा रहा है कि ये ब्रह्म के परे भगवान है। ब्रह्म एक ज्योति है, ये ज्योति के परे भगवान है। तो इसका मतलब यह है कि निर्विशेषवाद जो है वह एक प्रकार का सत्य है, पर वह परम सत्य नहीं है। तो इसीलिए ये दो श्लोकों के द्वारा कि सत्यस्यापाहितं मुखं तत्त्वं पूषणपावनं सत्य धर्माय दृश्यते, 15वां 16वां श्लोक है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि निर्विशेषवाद ये सत्य है पर परम सत्य नहीं है। निर्विशेषवाद का खंडन ईश्वर परिषद में इन दो श्लोकों के द्वारा हुआ है। ओके, हाँ, सत्य धर्म का अर्थ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते, तो धर्म ये शब्द आता है ध्रुव मतलब जो धारण करता है, उससे शब्द आता है धर्म। तो जो सत्य धर्म यहाँ पे आता क्या है कि सत्य स्वरूप। तो यहाँ पे भगवान का सत्य स्वरूप क्या है, भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में भी प्रकट होते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में भी प्रकट होते हैं, पर भगवान का सत्य स्वरूप क्या है, वो दो हाथ वाला है, श्याम सुंदर, मोर मुकुट पंक्ति वाले है, कृष्ण है वो। तो सत्य धर्म आया दुष्ट है, मतलब कि हे कृष्ण का स्वरूप आप हमें दिखलाइए, यह वर्णन है उसका। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच।